श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 25 श्लोक संख्या 30 विषय है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। हम श्लोक को बढ़ाते हैं सभी।
यदि समापं विखंडितेन्द्रियं सब्रीड भाविस्मित विभ्रमद्भ्रुवा त्वयोपसृष्टो भगवान् मनोभवः प्रवादते यथानुग्रहाण शोभने। यत क्योंकि ईशः यह मां मुझको अपांग तुम्हारी चितवन ने विखंडित विचलित इंद्रियम जिसकी इंद्रियाएं अथवा मन सब्रीड लज्जायुक्त भाव प्यार स्मित हंसती हुई विभ्रमत मोहने वाली भ्रुवा मोह वाली त्वया तुम्हारे द्वारा उपसृष्टः प्रभावित होकर भगवान अत्यंत शक्तिमान मनः भवः कामदेव प्रवादते पीड़ित कर रहा है। अथ अतः अनुग्रहण कृपा करो शोभने हे सुंदरी। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा जगतगुरु श्री प्रभुपाद की। सचमुच तुम्हारी चितवन ने आज मेरे मन को अत्यंत विचलित कर दिया है। तुम्हारी मुस्कान लज्जा युक्त होकर भी अत्यंत कामयुक्त होने के कारण मेरे अंतर में परम शक्तिशाली कामदेव को जागृत कर रही है। अतः हे सुंदरी मैं तुमसे कृपा की याचना करता हूँ। तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कामेच्छाएँ होती हैं और ज्यों ही मनुष्य किसी सुंदरी की भौहों की गति से विचलित होता है कि भीतर से कामदेव अपना बाण हृदय पर चलाता है। इस प्रकार मनुष्य सुंदरी की भौहों की गति यानी चितवन से तुरंत परास्त हो जाता है। जब मनुष्य कामेच्छा से विचलित हो जाता है तो उसकी इंद्रियाएं सभी प्रकार के विषयों से यथा वाणी स्पर्श रूप गंध स्वाद इत्यादि भोग्य वस्तुओं से आकर्षित होती हैं। ये आकर्षक इंद्रिय वस्तुएं विषय उसे स्त्री के वश में होने के लिए बाध्य कर देती हैं। इस प्रकार जीव का वद्ध जीवन प्रारंभ होता है। वद्ध जीवन का अर्थ है स्त्री के वश में होना और जीव निश्चित रूप से स्त्री या पुरुष का कृपाकांक्षी रहता है। इस प्रकार जीव एक दूसरे के बंधन में रहते हैं और इस तरह माया द्वारा मोहित होकर विबद्ध जीवन बिताते रहते हैं। ओम अज्ञान्तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वंदे अहम श्री गुरो स्युतपद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परजन सहतम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरत्वसे नमः पंचाकल्पतरभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवाद पश्चादेश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यदि समापांग विखंडितेन्द्रियं सब्रीड भाविस्मित विभ्रमं भ्रवा तयोपसष्टो भगवान् मनोभव प्रवादति यथानुग्रहाण शोभने सचमुच तुम्हारी चितवन ने आज मेरे मन को अत्यंत विचलित कर दिया है। तुम्हारी मुस्कान लज्जा युक्त होकर भी अत्यंत कामयुक्त होने के कारण मेरे अंतर में परम शक्तिशाली कामदेव को जागृत कर रही है। अतः सुंदरी मैं तुमसे कृपा की याचना करता हूँ। तो यहाँ पर ये विषय चल रहा है राजा प्रंजन के गुणों का वर्णन। आप पीछे से सुन रहे हैं कि नारद जी प्राचीन वरी को प्रंजनोपाख्यान के द्वारा उन्हें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और नारद जी इतिहास सुना रहे हैं पुरंजन का। उन्होंने बताया कि पुरंजन एक बहुत बढ़िया सुंदर नगर की खोज में निकला और उसे सुंदर नगर मिल भी गया नौ दरवाजे वाला, बड़ा प्रसन्न हुआ और उस नगर के सामने ही बहुत सुंदर बगीचा उपवन था, उसमें घूमने चला गया और उस बगीचे में उसको बहुत सुंदरी तरुणी स्त्री के दर्शन हुए और तरुणी स्त्री को देखते ही उसे आकर्षित हो गया। पर ऐसा आकर्षित हुआ कि उसका परिचय पूछने लगा, देवी आप कौन हैं, अपना परिचय बताइए। कई नाम लिए, आप उमा देवी हैं कि लक्ष्मी देवी हैं, अगर लक्ष्मी देवी हैं तो आपके हाथ में कमल तो है ही नहीं। और फिर मैं देख रहा हूँ कि आप देवियों में से कोई नहीं दिखती, क्यों? क्योंकि जो देवी होती हैं देवता लोग, उनके चरण पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आपके चरण पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए आप देवी तो है नहीं। पर आप सुंदरी, आप जो भी हैं, आपको देख करके मेरा मन बहुत आकर्षित हो रहा है, और यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो जाए तो जिस प्रकार लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु के साथ रहती हैं, और उसी प्रकार लक्ष्मी देवी के समान यदि आप मेरे साथ में आ जाएं तो मेरे ऊपर आपकी बड़ी भारी कृपा हो जाए। और यहाँ पर कहते हैं कि सचमुच तुम्हारी चितवन ने आज मेरे मन को आकर्षित कर दिया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कामेच्छाएं होती हैं, ज्यों ही मनुष्य किसी सुंदरी की भौहों की गति से विचलित होता है कि उसके भीतर कामदेव अपना वाण चला देता है। शास्त्रों में ऐसा कहा है कि स्त्री भगवान की बहुत बलवती माया है, स्त्री रूपी माया से बड़े बड़े योगी बड़े बड़े मुनि भी मोहित हो जाते हैं और अपने लक्ष्य से गिर जाते हैं। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में कपिल भगवान माँ देवहूति से कहते हैं, माँ जानती हो ये जो मेरी माया है स्त्री रूपणी बड़े बड़े बलवानों को भी परास्त कर देती है। बलम हे पश्य माया स्त्रीणाम जैनो दिशां या करोति पराक्रांतान भू विजृंभेण केवलम। भगवान कपिलदेव कहते हैं कि माँ ओहो मेरी स्त्री रूपी माया को तो देखो कितनी बलवान है, इतनी बलवान है मेरी ये माया स्त्री रूपी कि जो अपने भ्रकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी राजा जैनो दिशाम जिन राजाओं ने सभी दिशाओं को जीत लिया हो, जो दिग्विजयी होते हैं ऐसे दिग्विजयी वीरों को भी ये स्त्री रूपी माया अपनी भ्रकुटी विलास से अपने पैरों से उन्हें कुचल देती है। कितनी बलवान है मेरी ये स्त्री रूपी माया, और है वास्तव में कई जगह हमको इसका प्रमाण मिलता है कि भगवान की स्त्री रूपी माया से बड़े बड़े दिग्विजयी योद्धा भी परास्त हो जाते हैं, अपने होश आवाज खो बैठते हैं। ये उस समय की बात है जब नंद महाराज ब्रज में खूब भारी अपने लाला का जन्मोत्सव मना रहे थे, तो उनके मन में विचार आया कि हम तो यहाँ बहुत बड़ा भारी जन्मोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि नंद महाराज की कमी किसी प्रकार की थी नहीं। तत आरभ्य नंदस्य नंदस्य ब्रजम, नंद महाराज के ब्रज में सिद्धियां सिद्धियां अटखेलियां करती थी भगवान का अवतार होने पर, और लक्ष्मी जी वहां हरे निवासात गुणई यानी भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान होने से साक्षात लक्ष्मी जी का ब्रज निवास स्थान हो गया था। तो नंद महाराज ने बहुत भारी उत्सव किया, पर मन में विचार आया कि इतना भारी उत्सव कर रहे हैं और ये कि कंस को मालूम पड़ गई, दुष्ट स्वभाव का तो है ही कंस, उसे ईर्ष्या हो जाएगी, इतना धन कहाँ से आया इनके पास,
जो एक राजा के पास भी इतना ऐश्वर्य नहीं, उससे भी ज़्यादा ऐश्वर्य पूर्ण अपने पुत्र का जन्मोत्सव मना रहे हैं, वो चिढ़ जाएगा। इसलिए उसे न मालूम पड़े तो पहले ही उसका जो वार्षिक टैक्स होता है पहले ही पहुँचा दो तो अच्छा है। तो नंद महाराज गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्यम मथुराम गतः नंद कंसस्य वारस्यम करम धातुम कुरुद्वह। नंद महाराज अपने लाला की बहुत चिंता करते थे कि मथुरा तो जाऊंगा कंस का कर देने के लिए, पर मेरे लाला की रखवाली कौन करेगा। तो नंद महाराज ने गोपान गोकुल रक्षायाम बड़े बड़े बलवान गोपों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त कर दिया। बड़े बड़े बलवान गोप थे, किसी के हाथ में धनुष है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के बलवान बलवान गोप चारों तरफ से गोकुल की रक्षा में निरूपित हो गए। और उसी समय कंसेन प्रहिता घोरा पूतना वालघातिनी शिशुन चार निघनंती पुर ग्राम प्रजादिशो। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना कैसी थी, बोले बाल घातनी, बाल हत्यारी पूतना, और ब्रज में बच्चों को मारती मारती घूम रही थी। परंतु उस पूतना ने अब तक उन्हीं बच्चों को मारा था जो कंस के पक्ष के लोग थे, भगवान के पक्ष के किसी एक बच्चे को नहीं मार पाई थी वो। जीव गोस्वामी लिखते हैं गोपाल चंपू में कि उस पूतना ने भगवान श्री कृष्ण के पक्ष के किसी भी बच्चे को नहीं मार पाई वो। और जब पूतना गोकुल में आती है, राक्षसी थी मायावी थी, तो जीव गोस्वामी लिखते हैं कि पूतना गोकुल में ऊपरी आकाश में चारों तरफ मरना रही है, चारों तरफ देख रही है किस किधर से इस गोकुल में घुसने का हमको मौका मिले। ऊपर से ही चारों तरफ देख रही है, वो चारों तरफ देख रही है तो बड़े बड़े बलवान सभी तैनात खड़े रक्षा में, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्यम। नंद महाराज पहले ही निरूपित कर गए थे बड़े बड़े बलवान गोपों के लिए, और सब सावधानी से, क्योंकि नंद महाराज कह गए थे सावधान रहना, बाहरी व्यक्ति क्या कोई भी चीज कोई भी जीव गोकुल में प्रवेश नहीं कर सके। तो सभी गोप बड़े बड़े बलवान थे, कोई साधारण नहीं थे। सर्वे वही देवता प्रायो, जितने भी ब्रज में नंद महाराज के नंदाद्या ब्रजे गोपा, नंद महाराज के ब्रज में या वसुदेव जी के मथुरा में जितने भी लोग थे, सर्वे वही देवता प्रायो सब के सब देवता ही थे जो भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए पहले से ही भगवान के परकर आ गए थे। तो गोकुल की जो रक्षा कर रहे थे वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो देवता ही थे, बड़े बलवान थे, और सब अस्त्र शस्त्र लेकर के तैनात खड़े हुए थे। पूतना देख रही है चारों तरफ से किधर से घुसें, यदि ऐसे घुसेंगे इसी वेश में राक्षसी के वेश में तो हमको प्रवेश मिलेगा नहीं, झगड़ा हो जाएगा, कैसे प्रवेश करें उसमें। तो पूतना ने बहुत सुंदर इतना सुंदर वेश बनाया, इतनी सुंदरी बनी वो, बोले रमा इवह, लक्ष्मी जी के समान सुंदर बन गई वो, बहुत सुंदर। क्योंकि तीनों लोकों में कोई सुंदरी स्त्री है तो लक्ष्मी जी हैं, उनके समान कोई सुंदर है ही नहीं। तो वो रमा इव, लक्ष्मी जी के समान बहुत सुंदर बन गई पूतना, और एक हाथ में कमल का फूल भी ले लिया, कमल का फूल घुमाती हुई अब गोकुल में प्रवेश कर रही है। तो गोकुल में चारों तरफ से बड़े बड़े योद्धा धनुष बाण लेकर के तैनात खड़े हुए थे, और जैसे ही सभी योद्धाओं ने बड़े बड़े वीरों ने पूतना को देखा, बहुत सुंदरी, इतनी सुंदर कि उसकी सुंदरता को देख करके वो बड़े बड़े योद्धा सब बेहोश हो गए, न किसी ने रोका न किसी ने टोका। यह है भगवान की स्त्री रूपी माया, जो बड़े बड़े योद्धा
वहां रक्षा के लिए तैयार खड़े हुए थे, कोई नहीं रोक पाए। क्यों? क्योंकि इतनी सुंदरी बन के आई। तो भगवान कहते हैं कि बलम्बे पश्चिम आया स्त्री नाम जैनो वो दिशाओं। ओहो, देखो तो मेरी स्त्री रूपी माया को कितनी शक्तिशाली है, कितनी शक्तिशाली है। जो बड़े बड़े दिग्विजयी वीर होते हैं, ऐसे योद्धाओं को भी अपने भौं के इशारे से ही कुचल डालती है, पैरों से कुचल डालती है। यह भगवान की स्त्री रूपी माया। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे तो उस समय उनके पास रुक्मिणी जी का पत्र आया, बड़ा ही सुंदर पत्र। रुक्मिणी देवी ने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण के हाथ में पत्र दिया और कहा, ब्राह्मण देव मेरा ये कार्य करो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मेरा विवाह तो मेरा भाई सुषपाल के साथ करना चाह रहा है। मेरे द्वारकाधीश को किसी प्रकार का कोई समाचार मिला ही नहीं है, तो आप मेरा समाचार द्वारकाधीश के पास पहुंचा दो। तो ब्राह्मण देव पत्र लेके आए द्वारका में। भगवान ने ब्राह्मण देव का बहुत स्वागत किया, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों के पुजारी हैं। ऐसा लिखा है भागवत में, भगवान तो नीचे बैठ गए, ब्राह्मण देव को अपने आसन पर बिठा दिया, है ना, ऐसा लिखा है भागवत में। बड़ी सेवा करी उनकी और बोले, देखो ब्राह्मण देव, जो ब्राह्मण तपस्वी है वो ब्राह्मण तो मेरा बहुत पूजनीय है, कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तो ब्राह्मण देव बोले, प्रभो मैं पत्र लेके आया हूं कौंडिन्यपुर से, और ये पत्र भगवती रुक्मिणी देवी ने भेजा है। भगवान बोले, तो सुनाओ पढ़ के। पंडित जी बोले, महाराज ये आपका पर्सनल पत्र है, आप स्वयं पढ़ो। भगवान बोले, देखो ब्राह्मण देव, हमारा ब्राह्मणों से कुछ छुपा हुआ नहीं है, आप ही पढ़ के सुनाओ, आप संकोच क्यों करते हो। तो रुक्मिणी देवी ने 7 श्लोक लिखे थे, बहुत सुंदर। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवतामते निर्विश्य करुण विवरै हरितो अंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्तलाभम त्वयि अच्युता पत्रम चित्तम पत्रपम्मे। रुक्मिणी देवी लिखती हैं कि हे प्रभो, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। रुक्मिणी देवी की तो भुवन सुंदर, क्योंकि भगवान तीनों लोकों में सबसे ज्यादा है सुंदर हैं, उनके समान कोई सुंदर है ही नहीं, तो उनसे बढ़कर के क्या हो सकता है। हे भुवन सुंदर, मैंने आपके गुण और रूपों के बारे में सुना है, और जब से मैंने आपके गुण और रूप सुने हैं तब से मेरा मन निर्लज्जता पूर्वक आपके चरणों की दासी होना चाहता है। और प्रभो, आपके जो गुणों को सुन लेता है, निर्विश्य कर्ण विवरही हरतो अंगतापम, जो आपके रूप और गुणों लीलाओं को सुनते हैं और आपकी लीलाएं गुण कथाएं कान के माध्यम से जब हृदय में प्रवेश करती हैं, निर्विश्य कर्ण विवरही, तो हरतो अंगतापम, सारे अंग के तापों को हर लेती हैं आपकी लीला श्रवण मात्र करने से। तो प्रभो, मैंने आपको वर्णन कर लिया है, तन्मे भवान खालो व्रत व्रत अंग जायाम, मैं आपकी पत्नी हो चुकी और आपको पति रूप में वर्णन कर लिया। ये बहुत लंबी कथा है, ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा इसका भाव क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण को बुलाया कि आप प्रभु मेरा हरण करके ले जाओ। अंतः पुरांतर चरीम अनहित्य बंधु स्वाम उदवहे कथम इति प्रमदाय उपायम। आप ये सोचो कि भाई तुम्हारा हरण करने आएंगे तो तुम अंतःपुर में रहती हो, और अंतःपुर से तुम्हारा हरण करेंगे तो वहाँ तुम्हारे भाई से झगड़ा हो सकता है, तुम्हारे पिताजी से भी झगड़ा हो सकता है, और झगड़ा होगा तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो प्रभु उसका उपाय मैं बताती हूँ, प्रमदाम उपायम, इसका उपाय बताती हूँ क्या। बोले पूर्वे दुरस्ते महति कुलदेव यात्रा यश्याम बहिर नव वधु गिरजाम पेयाम। कहती है हे प्रभु, हमारे यहाँ कौंडनपुर में विदर्भ देश में ऐसी रीति है कि जिस कन्या का विवाह होता है तो विवाह होने से एक दिन पहले वह अंबिका देवी के मंदिर में पूजन करने के लिए जाती है। तो मैं वहाँ अंबिका देवी के मंदिर में पूजन करने के लिए जाऊंगी और आप वहाँ से मेरा हरण कर लेना। और ऐसे नहीं निर्मथ्य मगध चेन्द्र वलम प्रसही, ऐसे नहीं कायरों की तरह नहीं, निर्मथ्य मगधेन्द्र जो मगध नरेश इत्यादि सुषपाल जरासंध इत्यादि जो नरेश बड़े बड़े राजा आए हुए हैं, ऐसे घमंडियों का मंथन करके, जैसे आपने समुद्र का मंथन करके भगवती लक्ष्मी जी की प्राप्ति करी, ऐसे ही उन दुष्टों की सेनाओं का मंथन करके और बलम प्रसही अपनी वीरता का परिचय देख करके आप मेरा हरण करके ले जाएं प्रभु। तो भगवान जब रुक्मिणी देवी का हरण करने गए तो उस समय रुक्मी ने, जो रुक्मिणी का भाई था, राजमहल से लेकर के भगवती अंबिका के मंदिर तक इतनी व्यवस्था, इतने सैनिक, इतने योद्धा रक्षा में नियुक्त कर दिए कि कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सके। जो रोड था, रास्ता था घर से लेकर के मंदिर तक, चारों तरफ से सैनिक खड़े तैनात कर दिए, बड़े बड़े योद्धा। और जब रुक्मिणी देवी अंबिका देवी की पूजा करके बाहर निकलती हैं तो देखती हैं अभी द्वारकाधीश तो आए ही नहीं। इधर द्वारकाधीश जब जा रहे हैं हरण करने के लिए, देख रहे हैं बड़ी बाहरी काफी सेना तैनात खड़ी हुई है, अगर झगड़ा करते हैं तो सबको पता लग जाएगा अभी। पर हम सोचे झगड़ा जब हो जब पहले हम अपनी वस्तु को प्राप्त कर लें, उसके बाद झगड़ा हो तो ठीक है। तो भगवान ने जैसे ही उन लोगों को देखा, बड़े बड़े सैनिक खड़े हुए थे, तो भगवान का नाम, भगवान एक प्रकार से क्या है, मनमोहन, जो बड़े बड़े देवताओं के मन को भी मोहित करने वाले हैं। तो बड़े बड़े योद्धा वहां खड़े हुए थे तो भगवान मनमोहन की सुंदर उस मोहिनी मूरत को देख करके मोहित हो गए। और कुछ जो योद्धा बचे थे तो भगवती रुक्मिणी देवी जब अंबिका देवी के मंदिर से बाहर निकली और देखा द्वारकाधीश अभी नहीं आए, तो उन्होंने अपने मुखमंडल से अपनी जो अलकें लटकी हुई थी उन अलकों को जैसे ही हटाया और भगवती रुक्मिणी देवी की सुंदर छवि की, सुंदर मुख के दर्शन, जो वहाँ जो योद्धा खड़े हुए थे रक्षा में, भगवती रुक्मिणी के दर्शन किए और उनकी सुंदरता को देख करके एकदम धड़ाम से गिर गए, उनके अस्त्र शस्त्र हाथों से नीचे गिर गए, उन्हें अपने शरीर का होश हवास नहीं रहा। इतनी सुंदरता को देख करके सब लोग मूर्छित से हो गए। तो ये है भगवान की स्त्री रूपी माया, जो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े योद्धाओं को कुचल देती है। अरे योद्धाओं की तो बात छोड़िए, यहां तक का बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी, यत तो ही अप कौनते पुरुषस्य विपश्चिताः इंद्रियाणाम इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसवम मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यत तो ही अप कौनते विपश्चिताः, जो बड़े बड़े विपश्चित मनुष्य यानी बुद्धिशाली व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, यततः, और ऐसे प्रयत्नशील विवेकी पुरुषों के मन को भी इंद्रियाणी प्रमाथिनी, ये जो इंद्रियां हैं ये बलपूर्वक उसके मन को हरण कर लेती हैं। पद्म पुराण से बड़ा सुंदर श्लोक आता है, नारीणाम नैनादेशः सुराणपि दुर्जयः सैन विजितो लोके हरिभक्तः स उच्यते। पद्म पुराण में शौनक जी शौनकादृश्यों को सुना रहे हैं। कहते नारीणाम नैनादेशः सुराणामपि दुर्जयः, कहते हैं कि स्त्रियां नेत्रों के कटाक्ष से जो संकेत करती हैं, स्त्रियाएं नेत्रों के कटाक्ष से जो संकेत करती हैं तो उनका उल्लंघन करना,
उनका उल्लंघन करना देवताओं को भी कठिन हो जाता है। नारीणाम नैना देश सुराणाम अपि दुर्जय, जो स्त्रियों के नेत्रों के कटाक्ष जब करती हैं, नेत्रों के कटाक्ष के संकेत होते हैं, उन संकेत से देवता भी, सुराणाम अपि देवता भी अपना होश आभास को बैठते हैं। इसलिए जिसने उस पर विजय प्राप्त कर लिया, किस पर, जो स्त्री की आकर्षणता है, जो स्त्री की आकर्षणता को जीत लेता है, वही वास्तव में क्या है, बोले स एन विजतो लोके हर भक्त स उच्यते। विजतो लोके, वही व्यक्ति वास्तव में जो इस पर विजय प्राप्त कर लेता है, स्त्री आकर्षणता पर, वही हर भक्त स उच्यते, वही वास्तव में भक्त कहलाता है, वही वास्तव में हरि भक्त है। नहीं तो बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े मुनियों के मन को भी स्त्री का सौंदर्य हरण कर लेता है। जैसे शौभरी मुनि, शौभरी मुनि कोई साधारण महात्मा नहीं, जो यमुना के अंदर तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते बाबा अंतिम चरण में आ चुके थे, सिद्धि की सिद्धि प्राप्त होने वाली थी उनको, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले ही थे, पर बाबा ने क्या देखा, एक स्त्री पुरुष को संभोग करते, और वो भी स्त्री पुरुष क्या, मछली, मछली नर मादा दोनों संभोग कर रहे थे, बाबा की दृष्टि पड़ गई उस पर, और दृष्टि पड़ते ही बाबा के मन में विकार उत्पन्न हो गया। और ये ध्यान रखना कि जब भी कभी मन में विकार घुसता है, तो उस विकार के घुसने के दरवाजे ये दोनों आंखें हैं, इन आंख रूपी गेट के द्वारा ही मन में हमारे हृदय में विकार घुसते हैं। इन आंखों से हम जैसा विकृत शरीर देखेंगे, वैसा किसी का दूषित शरीर, तो वैसे ही हमारे मन में दूषित भावना आएगी। शौभरी मुनि बेचारे फंस गए, उनके मन में इच्छा हुई, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। अब बाबा ध्यान करने लगे विषयों का, कि देखो ये मछली कैसे विषय का सुख ले रही है, सुख ले रहे हैं, वो ध्यान करने लगे। अब ध्यान करते करते उनकी इच्छा हुई कि मैं भी क्यों नहीं ये सुख लूं। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, फिर उनकी संग करने की इच्छा फिर जागृत हुई। पर हमें स्त्री चाहिए, स्त्री कहाँ से लाएं, तो मथुरा में आई। जीव गोस्वामी कहते हैं कि उस समय मानधाता राजा मथुरा में राज्य कर रही थी, 50 सुंदरियां थी उनके पास, 50 कुमारियां, राजकुमारियां, और सवरी मुनि आए, महाराज ने बड़ा स्वागत किया, आइए प्रभो, आइए स्वामी जी, बड़ी भारी कृपा करी आपने, जो आपने दर्शन दिए, कहो आपकी क्या सेवा करें। बोले सेवा क्या करनी है भाई, हमारी इच्छा विवाह करने की हो रही है, तुम्हारे पास 50-50 बेटियां, एक बेटी हमको दे दो। राजा ने उनकी शकल देखी, क्योंकि योगी थे और बहुत तपस्या कर रहे हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं वो शरीर उनका बस दुबला पतला हो जाता है, एक एक उनकी नस हड्डी चमक रही, बाबा के बाल भी सब उलझे हुए, रूप भी बढ़िया नहीं, कुरूप लग रहे, और आयु भी बुढ़े बाबा लग रहे। तो ऐसा कौन पिता होगा जो अपनी पुत्री को कुरूप के लिए और बुढ़े के लिए और बाबा के लिए ऐसे विवाह देगा, पर उनको मना भी करना नहीं बनता, क्यों मना करते हैं, तो हो सकता है बाबा कहीं नाराज हो गए, साप दे सकते हैं, भाई योगी हैं। तो बड़ी युक्ति से काम निकाला, महाराज देखो मेरी तरफ से बिल्कुल कोई इनकार नहीं है, मेरी 50 बेटियां अंतःपुर में, और जो आपको पसंद कर ले उसी के साथ आप विवाह कर लेना। राजा ने विचार किया बुढ़े बाबा को कौन पसंद करेगी, पर सौवरी मुनि समझ गए, क्योंकि योगी थे, ठीक है राजा कहाँ है आपका अंतःपुर। तो जैसे ही अंतःपुर में प्रवेश किया, तो वो अपने योग से बहुत सुंदर हो गए, सुंदर हो गए, तो 50 जो राजकुमारियां थीं आपस में झगड़ने लगी, इतने सुंदर हो गए मानो साक्षात कामदेव ही, कामदेव ही हो क्या।
सभी राजकुमारियां आपस में झगड़ा करने लगी, नहीं मैं इनके साथ विवाह करूंगी, मैं विवाह करूंगी। सवारी मुनि बोले, लड़ती क्यों आपस में, 50 विवाह कर लो हमारे साथ, झगड़ो मती, 50 के साथ विवाह हम कर सकते। तो सौभरी मुनि ने 50-50 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। अब बाबा ने विवाह तो कर लिया, अब भाई एक स्त्री को कोई रखता है तो एक स्त्री का मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, उसको संभालना इतना आसान नहीं। और जिसके घर में 2 पत्नियां हो तो रोज झगड़ा, और जिसके यहां 50-50 पत्नियां हो तो उसका तो फिर कहना ही क्या है। अब तो बाबा बहुत दुखी, कह रहे कहां झंझटम पड़ गए हम भाई, अच्छे भले भजन कर रहे भगवान कहां, और कहां देखो हमारी उस मछली को देख करके मन में कहां विकार उत्पन्न हो गया जो हम अपने लक्ष्य से गिर गए। अब तो उनके एक एक पत्नी के 100-100 बेटा हुए, 50 स्त्रियां और सबके 100-100 बेटा हुए, लगभग 5000 बेटा है गए, 50 स्त्री, 550 और एक स्वयं, यानी 5051 हो गए पूरी फैमिली उनकी। अब इतनी बड़ी फैमिली को मेंटेन करते हुए बाबा अब थोड़ा उनको होश आया, देखो कहाँ चक्कर में फंस गए हम, कहाँ अच्छे भले हम भजन कर रहे पर कहाँ हमारी बताओ एक इंद्रिय, क्योंकि जो 5 इंद्रियां है ना, इन 5 इंद्रियों में से एक भी इंद्री कोई हमारी अपनी विषय की ओर जाती है तो हमारे रथ को खड्डे में डाल देती है। अब बाबा पछता रहे हैं और पछताते हुए क्या गा रहे हैं, और समय तो गाते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय, और अब श्रीमान जी क्या गा रहे हैं सब लोगों को शिक्षा देने के लिए, कुलिसंगं त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मोक्षो सर्वात्मनान विसृजेद बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरण रहसी चित्तम अनंतैसे युजीत व्रत सूतत चेतः प्रसंगः। अब सौभरी मुनि गुनगुना रहे हैं, क्या गा रहे हैं कि संगम त्यजेत मिथुन व्रतनाम मुमुक्षुहु मुमुक्षुहु, जो परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं ऐसे मुमुक्षु लोगों के लिए संगम त्यजेत मिथुन व्रतनाम, जो मिथुन व्रति हैं अर्थात जो विषयी लोग हैं, जो स्त्री संगी हैं, ऐसे विषयी लोगों का, ऐसे स्त्री संगी लोगों का हमेशा संग छोड़ देना चाहिए, संगम त्यजित ऐसा संग त्याग देना चाहिए, और वहिरिंद्रियाणी अपने मन को कभी वहिर्मुख नहीं होने दे, क्योंकि एक भी इंद्री हमारी अपनी विषय की ओर दौड़ेगी तो बस हमारा पतन करा देगी। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें, उनका जप करें, उनका भजन करें और एकांत स्थान में रहें और अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दें, तभी जीव अपने परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है। और संग करना भी है तो संतों का ही संग करें, तब जीव का कल्याण होता है। तो इसलिए शास्त्रों में हमें जगह जगह खूब बड़ी शिक्षा मिलती है कि साधक के लिए सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। भगवान कपिलदेव ने कहा है कि संगम न कुरियात प्रमदास जातो योगस्य पारः परमारुक्षो हो मत सेवया प्रतलब्धात्मलाभो वदन्त्या निर्य द्वारमस्य। भगवान कपिलदेव कहते हैं कि संगम न कुरियात प्रमदास जातो योगस्य पारः परमारुक्षो हो, जो योगारूढ़ व्यक्ति हैं जिन्हें मत सेवया, भगवान कहते मेरी सेवा के द्वारा आत्मा और अनात्मा का जिसको बोध हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए संगम न कुरियात प्रमदास जातु, भूल करके भी किसी स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। क्यों बोले निर्य द्वारमस्य, इसको क्या कहा गया है स्त्री के संग को, बोले खुला हुआ नरक का द्वार है, खुला हुआ नरक का द्वार है। जो स्त्री की आकर्षण कामता से जीव आकर्षित हो जाता है तो फंस जाता है और नरक में ही जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, दीप सिखा है युवती तन मन जन हो सी पतंग, भज हो राम तज काम सब करहु सदा सत्संग। गोस्वामी जी ने कहा है कि स्त्री का जो शरीर है वो कैसा है, किससे तुलना की है, बोले दीप शिखा। एक दीपक होता है ना दीपक, और दीपक की लौ जलती है, जब दीपक जलता है रात्रि में तो उसकी लौ पर, उसकी रोशनी पर पतंगा आते हैं, पतंगा आते हैं, क्योंकि वो आंखें कमजोर हैं, वो रूप के बहुत काफी आकर्षित है रूप की ओर, तो पतंगे आते हैं उसकी ओर और लोहे पर आकर के उसी जलती हुई दीपक की लोहे पर आते हैं और जल के स्वाहा हो जाते। तो उसी प्रकार मन जन होश पतंग, ये युवती सुंदरी स्त्री का शरीर क्या है, दीपक की शिखा की तरह है, और मन क्या है, ये पतंगे की तरह है। जब ये मन उस सुंदरी स्त्री शरीर की ओर आकर्षित होगा तो क्या होगा, उसका पतन हो जाएगा। इसलिए बड़ा सावधान किया है साधक के लिए, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। चाहे कोई कितना ही सन्यासी हो, कितना ही सिद्ध पुरुष हो, कितना ही पहुंचा हुआ भक्त हो, कभी उसे अपने इस चंचल मन का भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे हम तो रहेंगे स्त्रियों के साथ, हमारा क्या बिगड़ सकता है, नहीं नहीं, माता सशस्त्रा दुहित्रा वा नावयुक्ता भवेत, ऐसा कुछ कहा है, बलवान इंद्रिय ग्रामो हो विद्वान समपि कर सती, ऐसा कहा है भागवत में कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक स्थान पर सटकर न तो अपनी पुत्री के साथ बैठना चाहिए, न अपनी बहन के साथ बैठना चाहिए, न अपनी माँ के साथ बैठना चाहिए। क्यों, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्राम हो, जो इंद्रिय ग्राम पर बलवान है, तो कहा ठीक है इंद्रिय बलवान है तो जो व्यक्ति साधक नहीं है उनको ही तो आकर्षित कर सकती है, नहीं नहीं, विद्वान समपि कर सकती, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं ऐसे विद्वानों को भी आकर्षित कर लेती इंद्रियाएं। इसलिए बहुत सावधान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि जब कपिल भगवान, जब ऋषभ भगवान अवधूत भेष में घूम रहे थे तो उनके पास रिद्धियाएं सिद्धियाएं मूर्तमान होकर के आई, महाराज हमें सेवा बताओ, आपकी क्या सेवा करें। तो ऋषभ देव भगवान ने सबको ठुकरा दिया, कोई आवश्यकता नहीं हमको। तो महाराज परीक्षित बोले, गुरुजी एक एक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मनुष्य कई कई जन्म लगा देते हैं, तब कहीं एक सिद्धि मुश्किल से मिल पाती है, और उनके पास सभी सिद्धियां आकर के मूर्तमान होकर के प्रार्थना कर रहे हैं हमको स्वीकार करो, तो उनको स्वीकार नहीं किया। अरे कोई भी कितना ही कोई विद्वान व्यक्ति हो और भगवत कृपा से कोई भी उसे वस्तु मिले तो भगवत प्रसाद समझ के उसे स्वीकार कर लेते हैं। और ठीक है हम ये मानते हैं कि किसी भी सिद्धि को प्राप्त करके या बहुत कुछ ऐश्वर्य प्राप्त करके किसी को अभिमान हो सकता है, तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि सब तो साक्षात भगवान के अंश अवतार हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के तिराजन जानते हो, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो दूसरों को शिक्षा जब देते हैं ना तो स्वयं अपना आचरण करते हैं। जब तक स्वयं आचरण नहीं करेंगे कितना ही उपदेश दें लोगों को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसलिए स्वयं आचरण जो करते हैं, प्रभुपाद ने कहा है फर्स्ट आचार देन प्रचार, पहले आचरण करो उसके बाद प्रचार करो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं अपने आचरण के द्वारा लोगों को शिक्षा देते हैं। तथोक्तम, ऐसा कहा भी है, क्या कहा गया है, न कुर्यात करहिचि सख्यम मनसि अनवस्थिता यदि विश्रम्भा चिराचीर्ण च स्कंद तपेश्वर्यम्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन ऐसा कहा गया है कि किसी भी साधक के लिए जो कितना ही सिद्ध अवस्था तक क्यों न पहुंच गया हो, कितना ही सिद्ध अवस्था तक क्यों न पहुंच गया हो, ऐसे साधक के लिए भी इस चंचल मन का कभी भी किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भरोसा किया था सौभरी मुनि ने, बाबा फंस गए मछली को देख करके, भरोसा था भोलेनाथ को, एक बार तो कामदेव को भस्म कर दिया था, बड़ा भारी भरोसा था उनके लिए। लेकिन भगवान किसी का अभिमान नहीं रहने देते, ये भगवान की विशेषता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश द्वारका में बैठे हुए सिंहासन पर, और उस दिन सत्यभामा जी उनके साथ में बैठी हुई हैं, सत्यभामा, बड़ी सुंदर जोड़ी लग रही है दोनों की, द्वारका की कथा है। तो सत्यभामा के मन में कुछ ऐसा विचार आया, और पास में ही बैठे हैं गरुड़ जी, पास में ही एक साइड में गरुड़ जी बैठे हैं और एक साइड में मूर्तमान चक्र, उनके जो चक्र हैं वो बैठे हैं, भगवान के अस्त्र वो बैठे हुए हैं, इधर गरुड़ जी इधर चक्र, और एक एक आसन पर सिंहासन पर द्वारकाधीश और सत्यभामा बैठी हुई हैं। तो सत्यभामा ने भगवान से कहा, प्रभु मैंने सुना है कि आप पहले राम अवतार में आप राम थे। बोले हाँ था देवी, ये तो आपने ठीक सुना है। तो आपके साथ में आपकी जो प्रिया थी जानकी जी बहुत सुंदर थी। बोले हाँ बहुत सुंदर थी। तो क्या प्रभु वो मेरे से भी ज़्यादा सुंदर थी क्या? क्योंकि सत्यभामा थोड़ी सुंदर ज़्यादा थी, तो उन्हें अपनी सुंदरता का थोड़ा अभिमान भी था। तो क्या प्रभु मेरे से भी ज़्यादा सुंदर थी? तो भगवान बोले तो नहीं, पर उनकी तरफ देख के मुस्करा गए, मुस्करा गए, यानी जवाब देंगे बोले नहीं पर मुस्करा गए। उतने में ही गरुड़ जी बोल उठे, प्रभो देखो जहाँ भी कहीं आपको जाना होता है ना, खूब जल्दी पहुँचना हो तो आप मेरे सेवा लेते हैं ना, क्योंकि मैं आपको बहुत जल्दी पहुँचा देता हूँ। क्यों? गरुड़ जी की बहुत तीव्र गति है, जैसे हमारे मन की गति इतनी तीव्र है, यहाँ बैठे तुरंत कहाँ विदेश पहुँच जाएगा मन, और उससे भी कई गुना हजारों गुना गति गरुड़ जी की है, इतनी तीव्र गति, इतना तेज चलते हैं गरुड़ जी। तो गरुड़ जी को अपने तेज चलने का थोड़ा उन्हें भी अभिमान था। तो गरुड़ जी बोल पड़े, प्रभो क्या मेरे से ज़्यादा तेज चलने वाला और कोई है? भगवान उनकी तरफ देख के ही मुस्करा गए, इधर चक्र सुरन से भी नहीं रह गया। बोले प्रभो बड़े बड़े भारी युद्ध आप करते हैं और बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त करते हैं, तब प्रभु हमारे स्मरण करते हैं ना, और मैं आपके द्वारा छोड़ा हुआ कोई कितना ही बढ़िया से बढ़िया कितना ही शक्तिशाली अस्त्र हो सबको काट देता हूं मैं, तो प्रभु मुझसे भी शक्तिशाली और कोई अस्त्र है क्या? भगवान मुस्करा गए, ठीक है। अब भगवान गरुड़ जी से बोले, गरुड़ जी एक काम करो, देखो आप चले जाओ वन में जंगल में, और वहां मेरे भक्त हनुमान जी रहते हैं, एकांत में रहते हैं जंगल में, उनसे जाकर के कहना कि आज आपको द्वारका में भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में बैठे हुए हैं, जानकी सीता राम के रूप में हैं और वो आपको बुला रहे हैं। तो भगवान ने सत्यभामा से कहा, तुम जानकी जी का रूप बना लो, और भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में बैठ गए। इधर गरुड़ जी पहुंचे हनुमान जी के पास, बोले उनको नमस्कार किया पहले, और बोले हनुमान जी देखो भगवान श्री कृष्ण ने इस समय राम का रूप धारण किए हुए हैं और जानकी राम सीता राम का रूप धारण किए हुए हैं, आपको उन्होंने बुलाया है, आप चलो हमारे साथ। गरुड़ जी बोल हनुमान जी बोल ठीक है आप चलो मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने विचार किया, ये थोड़े बुढ़े बाबा हो चुके हैं हनुमान जी, हो बहुत देर तक पहुँच पाएंगे, तो बोले आप मेरे साथ बैठ जाओ, मेरी पीठ बैठ जाओ, बहुत जल्दी पहुँचा देंगे। हनुमान जी बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप चलो मैं आता हूँ। अब ज़्यादा क्यों उनसे बात करें भाई, क्योंकि हो सकता है कुछ नाराज़ हो जाए, तो ठीक है आप जल्दी आना, भगवान ने आपको बुलाया, ठीक है चलो आप मैं आता हूँ। तो गरुड़ जी मन में सोचते आ रहे हैं, देखो बुढ़े बाबा हो गई है, अब पता नहीं कब तक पहुँच पाएंगे। गरुड़ जी ये मन में विचार करते जा रहे हैं, और जैसे ही गरुड़ जी वहाँ पहुँचे हैं द्वारका में, तो भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में हैं और सत्यभामा जानकी जी के रूप में बैठी हुई हैं। हनुमान जी ने जाकर के सीताराम को प्रणाम किया और वहाँ बैठ जाते हैं। इधर भगवान ने चक्र सुदर्शन से कह दिया था कि तुम दरवाजे पर रहना, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सके,
ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तो चक्र सुदर्शन बाहर गेट पे खड़े, अब हनुमान जी वहां पर आ गए तो हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। हनुमान जी ने प्रणाम किया तो प्रणाम करते ही फिर बोले, प्रभु आज हमारी माता कहाँ है? बोले कौन? बोले जानकी जी। और बगल में जानकी जी के रूप में सत्य भामा बैठी हुई हैं। आज हमारी माता जी नहीं दिख रही, आपने कौन सी दासी को अपने पास बैठा लिया है? जब दासी कहा तो सत्य भामा को बड़ा एकदम बड़ी लज्जा सी आई, रो हमारी जानकी माँ कितनी सुंदर और आपने दासी को बगल में बैठा लिया है। सत्य भामा का सब एकदम अभिमान दूर हो गया। इधर गरुण जी आ रहे हैं तो गरुण जी ने देखा कि हनुमान जी पहले से पहुंच गए। गरुण जी नहीं पहुंच पाए तब तक हनुमान जी पहले ही पहुंच गए। तो गरुण जी एकदम बड़े आश्चर्य पड़ गए और बड़े लज्जाशील हुए कि देखो मैं तो अपने को बड़ा तेज चलने वाला समझता था। अब भगवान हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आप जब यहाँ मेरे पास आए तो दरवाजे पर किसी ने आपको रोका तो नहीं? बोले यहाँ पर वो किसने रोका? तो मुंह में से चक्र निकाल के रख देते हैं, अपने मुंह से चक्र निकाला और सामने रख दिया। बोले प्रभु ये चक्र देव थे, इन्होंने कहा कि हमें प्रभु की आज्ञा है कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सके, तो हमने इनको बोला भाई हमें भी प्रभु की आज्ञा है कि हनुमान जी हमारे पास आए, तो ये भी अपनी आज्ञा, ये भी आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे और हम भी आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। ये आपके मिलन में हमको अवरोध बने हुए थे तो हमने इनको पकड़ के मुंह में रख लिया और प्रभु आपसे मिलने के लिए हम आ गए। तो चक्रदेव का भी अभिमान सब दूर हो गया। कहने का तात्पर्य है कि कोई कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों ना हो जाए, कितना ही बड़ा सिद्ध अवस्था में क्यों ना आ जाए, कभी भी अपने को ये नहीं बड़ा नहीं समझना चाहिए कि मैं अब पूर्ण रूप से ऐसा सिद्ध बन गया हूं कि न किसी स्त्री से और न धन से मैं आकर्षित नहीं होऊंगा। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन स्त्री राम निरीक्षण स्पर्श संलाप छिड़नादिकम प्राणलो मिथुनी भूतानाम गृहस्थो अग्रतस्त्याजते। समय ज्यादा हो गया। कहते हैं कि किसी भी वानप्रस्थ के लिए और किसी भी ब्रह्मचारी के लिए, किसी भी सन्यासी के लिए यानी सावधान रहना चाहिए कि किसी भी स्त्री से किसी भी स्त्री को नहीं देखें। अगर देखना भी है तो पैरों की ओर देखो। अगर किसी भी स्त्री की मुंह की ओर देखोगे तो मन में विकार उत्पन्न होगा, गलत भावनाएं आएंगी, और पैरों की ओर देखोगे तो मातृभाव आएगा, मातृभाव। तो इसलिए हम शिक्षा दिए सुखदेव गोस्वामी ने, किसी भी सन्यासी के लिए, किसी ब्रह्मचारी के लिए या वानप्रस्थी के लिए है ना, किसी भी स्त्री को दर्शन नहीं करना चाहिए। और दर्शन ही क्या, उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए और उनसे बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, हंसी मस्करी नहीं करनी चाहिए, उनको दूर से ही त्याग देना चाहिए जो वास्तव में अपना कल्याण चाहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि न कुरियात करिच्छ सख्यम मनसी अनवस्थता यदि विश्रम भाचराचीर्ण तप स्कंद ऐश्वर्य। किसी भी साधक के लिए चंचल मन का भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा किया सौभरी मुनि ने, फंस गए बाबा, भरोसा था भोलेनाथ को, चिरकाल की हुई तपस्या उनकी बेकार हो गई। जब भोले बाबा और सौभरी मुनि भी है ना स्त्री के रूप से आकर्षित हो सकते हैं तो हम सब किस खेत की किस खेत की मूली हैं। इसलिए बहुत सावधान, बहुत सावधान। साधक के लिए एक एक पग संभाल के रखना है, एक एक पग, पदम पदम या तो विपदाम तेसा, वहां पर बहुत सारी आपत्ति, पता नहीं क्या क्या, कौन सा संकट कब कहां क्या खड़ा हो जाए, कहां कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहां फिसल जाए, तो बड़ा सावधानी की आवश्यकता है प्रत्येक साधक के लिए। तो यहां पुरंजन उपाख्यान से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पुरंजन स्त्री के उस सौंदर्य को देख करके आकर्षित हो गए और आकर्षित क्या हुए, देवी कृपा करो आप हमें अपना कृपा भाजन बना लो, हमारे ऊपर कृपा करो, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहा है उसके सामने। यह है स्त्री की आकर्षणता का यह है परिणाम। तो हम यहीं पर वाणी को विराम देते हैं, काफी समय ले लिया, क्षमा करना, 10 मिनट ज्यादा हो गया आपके। हरे कृष्णा।